नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, विपक्ष को महिला आरक्षण विधेयक को रोकने के लिए परिणाम भुगतने होंगे। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र और मठ के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 जारी। लोगों को जागरूक करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि ये योजना और विकास की नींव है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रियाद में सऊदी अरब के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की वार्ता से इनकार किया, अमेरिका की अव्यवहारिक मांगों का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग के साथ नई दिल्ली में वार्ता की। इस बैठक के दौरान भारत और दक्षिण कोरिया ने खेल, संस्कृति और रचनात्मक उद्योग के क्षेत्र में सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
आज हम अगले दशक की सक्सेस स्टोरीज की नींव रख रहे हैं। एआई, सेमीकंडक्टर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साझेदारी और प्रगाढ़ करने के लिए हम इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज लॉन्च कर रहे हैं। शिप बिल्डिंग, सस्टेनेबिलिटी, स्टील और पोर्ट जैसे क्षेत्रों में हम एमओयू कर रहे हैं। कल्चर और क्रिएटिव इंडस्ट्री में आपसी सहयोग से हम फिल्म, एनिमेशन और गेमिंग में भी नए आयाम स्थापित करेंगे।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों और कानून के प्रति सम्मान दोनों देशों के डीएनए में है।
8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है।
उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध व्यापक और गतिशील रहे हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने कहा है कि भारत वैश्विक दक्षिण के देशों में एक मार्गदर्शक के रूप में उभर चुका है। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पोत निर्माण में सहयोग को विस्तार देंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक को बाधित करने के परिणाम विपक्ष को भुगतने होंगे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 को लोकसभा में मंजूरी नहीं मिलने के बाद कांग्रेस और इसके सहयोगियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं बहुत गुस्से में हैं और भय से मुक्त हैं।
महिलाओं के सामने में हम लोग ये बता रहे हैं अभी कि आगे मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के लिए हमारा सरकार एनडीए काम करते रहेंगे, लेकिन जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को गिराया उनको भी सजा मिलना चाहिए और ये काला दाग कांग्रेस के ऊपर लगा है ये जीवन भर साफ होने वाला।
मध्य प्रदेश के भोपाल में भारतीय जनता पार्टी ने आज महिला आक्रोश रैली का आयोजन किया। भाजपा का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ किया है और आज की रैली इसी के विरोध में बुलाई गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र और मठ के शिलान्यास कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि यह पहल वैश्विक बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की विशेष भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है कि यह क्षेत्र जहां महायान और थेरावादा सहित विभिन्न बौद्ध परंपराएं समृद्धि स्वदेशी आस्था प्रणालियों के साथ सौहार्दपूर्वक सह अस्तित्व में विद्यमान है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश ने समुदाय की भागीदारी और सरकारी पहलों के माध्यम से बौद्ध तथा स्थानीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए लगातार कदम उठाए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 16वीं राष्ट्रीय जनगणना 2027 इस महीने की 16 तारीख से शुरू हो गई है। लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री पासांग दोरजी सोना ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जनगणना केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है बल्कि ये योजनाओं और विकास की नींव है। उन्होंने राज्यवासियों से आगामी 30 अप्रैल तक चलने वाले सेल्फ एन्यूमरेशन अभियान के में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सटीक जानकारी देने से बेहतर सेवाएं, बेहतर आधारभूत संरचना और हर समुदाय समुदाय के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने सभी से समय पर स्वयं गणना सेल्फ एन्यूमरेशन पूरी करने का आग्रह भी किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार समाप्त होने में केवल दो दिन शेष है। राज्य में विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रमुख नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के तेलुगुदेशम पार्टी TDP के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और केंद्रीय नागरिक विमानन तथा TDP के नेता केंजरापू राम मोहन नायडू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के लिए कोयम्बटूर से चुनाव प्रचार किये। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सातवां संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक उज्बेकिस्तान के नामगन में चल रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इसका उद्देश्य अर्ध पर्वतीय इलाकों में संचालन क्षमता को मजबूत करना है तथा गैरकानूनी सशस्त्र गुटों के खिलाफ विशेष सशस्त्र कौशल और विशेष अभियान पर ध्यान केंद्रित करना है। यह अभ्यास आगामी 25 अप्रैल तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने और प्रगाढ़ होते ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित सऊदी अरब के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ कई उच्चस्तरीय बैठक की है। ये यात्रा बदलते भू राजनीतिक परिस्थितियों के बीच भारत और सऊदी अरब के बीच लगातार बढ़ती कार्यनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। पेश है एक रिपोर्ट।
सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ सुहेल एजाज खान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के उपमंत्री डॉ सऊद अल साती ने किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर श्री डोभाल का स्वागत किया। इस यात्रा के दौरान श्री डोभाल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री प्रिंस फैजल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ मुसाद बिन मोहम्मद अल आईबान के साथ बैठक की। सऊदी के अधिकारियों ने बताया कि ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन के साथ हुई बैठक में ऊर्जा क्षेत्र और वैश्विक आपूर्ति की स्थिरता को समर्थन देने में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में सुरक्षा सहयोग के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने आतंकवाद से मुकाबले पर समन्वय और खुफिया जानकारी को साझा किए जाने पर समीक्षा की। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ।
ईरान ने अमेरिका के साथ दूसरे दौर की शांति वार्ता से इनकार कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका द्वारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के ध्वज वाले जहाज को जब्त करने या बाद में ईरान के नए दौरे की वार्ता शुरू करने की कोई योजना नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि वे ईरान के साथ संभावित वार्ता के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेज रहे हैं। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA ने बताया है कि वार्ता से इनकार करने की वजह अमेरिका की अत्यधिक मांगे, रुख में बार बार बदलाव और नौसेना नाकेबंदी है। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए पहले चरण की बातचीत आज फिर शुरू होगी। ये वार्ता 22 अप्रैल तक वाशिंगटन में की जाएगी। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले पंजाब किंग्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रनों से पराजित किया। एक अन्य मैच में कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से पराजित कर अपना पहला मैच जीता। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों तक लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कल तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी आज अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, सियांग, ईस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, नामसाई, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में विश्व पृथ्वी दिवस सतत भविष्य के लिए सौर ऊर्जा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक डॉ मोहम्मद रेहान परिचर्चा में भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अवसंरचना वो नींव है जिस पर आधुनिक देश बने हैं। उन्होंने कहा है कि मजबूती बुनियादी ढांचा लॉजिस्टिक लागत कम करता है, व्यापार को मजबूती देता है, निवेश आकर्षित करता है तथा उत्पादकता बढ़ाता है। रेलवे और राजमार्गों का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि परिवहन के ये माध्यम देश के दूरस्थ क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपार संभावनाएं खोलते हैं। राष्ट्रपति ने ये बात आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय रेलवे के परिवक्षकधानिकारी अधिकारी एवं केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा सड़क के सहायक कार्यकारी अभियंताओं के साथ बातचीत के दौरान कही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।